नमस्कार भारत, आज है 14 जून दिन बृहस्पतिवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उत्तर कोरिया की ओर से अब कोई परमाणु खतरा नहीं। डेमोक्रेट बोले किस दुनिया में रहते हैं ट्रंप।
What planet is the president on? Saying it doesn't make it so. North Korea still has nuclear weapons.
सुनिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग में सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा की पड़ताल करती एक जमीनी रिपोर्ट।
You can't get away beating a local. Non-local hitting a local is seen as an invasion, you know, in your own homeland. You're being beaten up by a non-local.
रूस में फुटबॉल विश्व कप की आज होगी शुरुआत। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मुलाकात का ज्यादातर देशों ने स्वागत किया है और इसे सही दिशा में पहला कदम बताया है। लेकिन मुलाकात के दौरान हुए समझौतों में इस बात का ब्यौरा नहीं दिया गया है कि परमाणु निरस्त्रीकरण कब और कैसे होगा। इस वजह से समझौते की आलोचना भी हो रही है। वहीं दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खत्म करने को लेकर भी ट्रंप की आलोचना हो रही है। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा
One of the things that I'm very happy about, we're not going to play the war games anymore, which you know how expensive that is. We're flying this massive.
एक बात जिससे मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ वो ये कि अब हम युद्ध का खेल नहीं खेलेंगे। क्या आप जानते हैं ये कितना महंगा होता है? अब हम युद्ध की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, विश्वास और बातचीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यमन की स्थिति पर बात करने के लिए ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक की मांग की है। ये मांग सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हमले के बाद की गई है। हुदैदा बंदरगाह को हुथी विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हमला किया था। यमन को मिलने वाली ज्यादातर सहायता हुदैदा बंदरगाह से होकर ही आती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस हमले को लेकर लोगों ने चिंता भी जाहिर की है। एक शख्स ने कहा हुदैदा बंदरगाह पर इस तरह कब्जा करना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नागरिक रहते हैं। इसके साथ ही यह यमन का सबसे अहम हिस्सा भी है। 70% सहायता यहीं से होकर आती है। ऐसे में इस तरह के हमले से सहायता रुक भी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक हथियारों की निगरानी करने वाले अधिकारियों के मुताबिक बहुत हद तक संभव है कि उत्तर सीरिया में पिछले साल हुए 2 हमलों में नर्व एजेंट सेरीन और क्लोरीन का इस्तेमाल हुआ हो। OPCW द्वारा जारी रिपोर्ट में सीरियाई संघर्ष में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि की गई है। इस महीने के अंत तक संगठन जांच के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्स वैगन पर करीब 80 अरब रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीजल एमिशन टेस्ट के लिए चीट डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना यूरोप में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। कंपनी का कहना है कि वो इसे स्वीकार करती है और जिम्मेदारी लेती है। पहली बार इस धांधली का पता 2015 में चला था, जब कंपनी ने टेस्ट के दौरान धोखा देने के लिए गैर कानूनी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। हैती ने ब्रिटिश सहायता एजेंसी ऑक्सफैम पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 2010 में आए भूकंप के बाद चैरिटी के कर्मचारियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार के आरोप के बाद लगाया गया है। हैती की सरकार ने कहा है कि ऑक्सफैम ने कानून का उल्लंघन किया है और मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इस वजह से फैसला लिया गया है। ऑक्सफैम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हैती के लोगों से हम माफ़ी मांगते हैं। फीफा ने घोषणा की है कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से 2026 विश्व कप के संयुक्त मेज़बान होंगे। प्रतिद्वंदी मोरक्को को हराकर तीनों देशों ने मेज़बानी हासिल की है। यह अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 80 मैच होंगे। 2018 वर्ल्ड कप शुरू होने के एक दिन पहले मॉस्को में यह घोषणा की गई। इस बार का मेज़बान रूस है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी लाइव संदीप सोनी के साथ। अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया अगले 2.5 साल के भीतर बड़े पैमाने पर परमाणु निरस्त्रीकरण करके दिखाए। दक्षिण कोरिया के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण का ये जो लक्ष्य है उसे 2.5 साल में हासिल किया जा सकता है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्या है इसकी वजह? पूरा ब्यौरा बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट के आधार पर भूमिका राय की जुबानी।
सिंगापुर में राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की ऐतिहासिक मुलाकात और उसके बाद हुए समझौते की समीक्षा के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ एक बड़ी डील पर काम होना अभी बाकी है। उन्होंने बड़े पैमाने पर निरस्त्रीकरण पर जोर देते हुए कहा है कि इस लक्ष्य को वर्ष 2020 तक हासिल किया जा सकता है। सिंगापुर में दोनों नेताओं के बीच कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से परमाणु हथियारों से मुक्त करने की दिशा में बढ़ने पर सहमति बनी है, लेकिन समझौते में इस बात का ब्यौरा नहीं दिया गया है कि उत्तर कोरिया कब और कैसे अपने हथियार छोड़ेगा। यही वजह है कि इस समझौते की आलोचना भी हो रही है।
President Trump tweeted this morning, there is no longer a nuclear threat from North Korea.
अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर कह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर कोरिया की ओर से अब कोई परमाणु खतरा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप किस दुनिया में रहते हैं? उत्तर कोरिया के पास अब भी परमाणु हथियार हैं। एक अन्य डेमोक्रेट और यूएस सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सदस्य एलिजाबेथ वॉरन कह रही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना किसी गारंटी के उत्तर कोरिया को रियायत दे दी है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उत्तर कोरिया ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। ट्रंप ने उत्तर कोरिया को जो दिया है बदले में अमेरिका को कुछ नहीं मिला है। इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि समझौते के अनुसार उत्तर कोरिया अपने परमाणु आयुध और उन्हें लॉन्च करने वाली मिसाइलों को अपने पास रखेगा। इसके अलावा उत्तर कोरिया ऐसे किसी प्रक्रिया पर राजी भी नहीं हुआ है जिससे उसके परमाणु हथियारों को खत्म किया जा सके।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उत्तर कोरिया से अब कोई परमाणु खतरा नहीं। इस पर डेमोक्रेट बोले किस दुनिया में रहते हैं ट्रंप। रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख कर रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का, जहां राजधानी शिलोंग में लगभग 10 दिन पहले एक इलाके में दो गुटों के बीच हुई मारपीट ने सांप्रदायिक हिंसा का देखते ही देखते रूप ले लिया था। पुलिस ने लगभग 50 लोगों को हिंसा फैलाने, पुलिस पर हमले और दूसरे मामलों में गिरफ्तार किया है। राजधानी शिलोंग में अब भी कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने शिलोंग जाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि वहाँ बसे सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा की वजह आखिर क्या है। सुनिए ये रिपोर्ट।
टैक्सी के मौलांग घाट तिराहा से मोड़ते ही बाईं तरफ कूड़े का ढेर, नाली और बारिश के पानी में मिली गर्द और गंदगी से चिपचिपी पड़ी सड़क, दोनों तरफ टिन, लकड़ी और ईंट के एक दूसरे से चिपके खुद को खड़ा रखने की कोशिश करते वो पौने पौने से घर, और इन सब के बीच से झांकता वो गुरुद्वारा। यह है शिलोंग का पंजाबी लेन। शहर में कुछ लोग इसे स्वीपर्स लेन या हरिजन कॉलोनी भी बुलाते हैं। जगह जगह मौजूद अर्धसैनिक बल के जवानों की मौजूदगी साफ करती है कि इलाके में हाल ही में कोई बड़ी हिंसा हुई है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के गुरजीत सिंह झगड़े की शुरुआत को लेकर कहते हैं,
यहाँ पे पब्लिक टैप में ना लड़कियाँ पानी भर रही थी, तो उन्होंने बस को लेके जहाँ पे पानी भर रही थी ना वो टैप पे ला के खड़ा कर दिया, और उन्होंने आगे से विरोध किया लड़की लोगों ने, तो ड्राइवर ने गंदी गाली देनी शुरू कर दी, इन लोगों ने भी आगे से गाली दी, तो फिर वो नीचे गाड़ी से नीचे उतर के आके उसने किक मारा लड़की को, फिर सब लोग लड़कियों ने मिल के पीट दिया ड्राइवर को भी और हैंडीमैन को भी जो कंडक्टर था।
लड़ाई को लेकर छेड़छाड़ और दूसरी कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि पंजाबी लेन में उस दिन पिटने वालों में एक 14 और दूसरा 15 साल का लड़का भी था। सूबे के सबसे बड़े कबायली खासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लड़कों में से एक की मौत की अफवाह किसी तरह से सोशल मीडिया पर फैल गई। फिर क्या था, देखते देखते खासी युवकों की भीड़ बड़ा बाजार के पास के इलाके में जमा हो गई और पुलिस पर भी पथराव शुरू हो गया। खासी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष लैम्बॉक मोरिंगार कहते हैं,
वेल दिस इंसिडेंट इज हैपन ऑन द 31st ऑफ
31 मई को उस एरिया में जो हुआ वो पहली बार नहीं था, पिछले दशक भर में ऐसा बार बार हुआ है। उस दिन तीन खासी युवाओं को पीटा गया, जिसके बाद खासियों में दशक भर से जमा गम और गुस्सा फूट पड़ा। बजाय इसके कि हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाता, पुलिस मामले में सुलह कराने की कोशिश में लगी रही। हिंसा की जो घटनाएं अगले तीन चार दिनों हुई वो इसी वजह से थी। ये थे खासी नेता के शब्द। पुलिस को मामले में सुलह सफाई करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, कहना है अंग्रेजी दैनिक द शिलोंग टाइम्स की संपादक पैट्रिशिया मुखिम का, जिनके मुताबिक मेघालय में किसी लोकल को पीट कर बचना मुश्किल है।
यू कांट गेट अवे बीटिंग
किसी मूल निवासी का किसी बाहरी के हाथों पिट जाना यहाँ बेइज्जती और शर्म से जोड़कर देखा जाता है। जैसे, अरे आपके घर में घुसकर आपको पीट डाला, और अपने हितों को साधने वाले लोग तो बैठे ही हैं, जो आग में घी डालने का काम करते हैं। इसी वजह से चंद लोगों के बीच हाथापाई का मामला सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया।
हाल के हंगामे के बाद से मौलांग घाट के तकरीबन 2 एकड़ के दायरे में बसे पंजाबी कॉलोनी को कहीं और शिफ्ट करवाने की मांग तेज हो गई है। शिलोंग के सबसे महंगे कमर्शियल इलाके पुलिस बाजार के बाद मौलांग घाट या बड़ा बाजार का ही नाम आता है, और वही है पंजाबी लेन। सूबे की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली कॉनरेड संगमा सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो पुनर्वास से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट देगी। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सनी सिंह कहते हैं,
बोलते हैं कि इसको बिजनेस, अब इसको प्लेस ऑफ बिजनेस बनाएंगे, तो अगर ये रिमूव होंगे तभी बिजनेस प्लेस बन सकता है, जब तक हम लोग यहाँ से रिमूव नहीं होंगे तो बिजनेस अब बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
लेकिन साथ ही वो ये भी जोड़ते हैं कि लोग तो 10 साल कहीं रह लें तो जमीन नहीं छोड़ते, हम तो यहाँ पिछले तकरीबन 150 सालों से रहते आए हैं। पंजाबी लेन के लोगों का दावा है कि एक स्थानीय सरदार सीएम ऑफ मिलियम ने उन्हें ये जमीन रहने के लिए 19वीं सदी के मध्य में दी थी। ये सिख परिवार शिलोंग ब्रितानी अधिकारियों द्वारा मलमूत्र की सफाई के काम के लिए लाए गए थे। अब विवाद इस बात को लेकर भी है कि स्थानीय सरदार ने जमीन समझौते के तहत नगर निगम को अपने कामगारों के लिए दी थी या सीधे सिख समुदाय को। खासी संगठनों का कहना है कि अगर ये जमीन सिखों को नगर निगम के द्वारा मिली भी थी तो केवल उन लोगों के रहने के लिए जो कॉरपोरेशन में काम करते थे या हैं, जिनकी तादाद 20 से 25 होगी, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो लोग बसे हैं वो कौन हैं? फैसल मोहम्मद अली, BBC, शिलोंग।
16 साल पहले गुजरात में हुए दंगों और अन्य मुद्दों पर खोजी पत्रकारिता करने वाली पत्रकार राणा अयूब का कहना है कि उन्हें जान से मारने और यौन हिंसा की धमकियां लगातार मिल रही हैं। राणा अयूब का कहना है कि उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए BBC संवाददाता मानसी दास ने राणा अयूब से बात की।
ये धमकियां तो खैर मुझे देखिए हमेशा मिलती रहती हैं, और कोई ये पिछले 10 सालों से हो रही है, लेकिन इस बार जो है जो एक सतह होता है वो गिर गया है। जैसे कि डेथ थ्रेट्स जो है वो मेरे फोन पर आने लगे हैं, पहले वो सब चीजें ऑनलाइन होती थी, अब वो फोन पर आने लगी हैं। मेरे नाम का एक पोर्नोग्राफिक वीडियो है, उसको इस पे मेरा इमेज मॉर्फ कर दिया गया है, उसको हिंदुस्तान के सारे फोन पर, व्हाट्सएप पर उसको सर्कुलेट कर दिया गया है। मेरा नंबर, मेरा एड्रेस ट्विटर पे ट्वीट कर दिया गया है ये लेकर कि आई एम अवेलेबल। तो जिस तरह की इस बार गंदगी मैंने देखी वो पहले कभी नहीं देखी है। और उसके बाद मेरे नाम पे फेक ट्वीट रिलीज किए गए हैं कि मैं चाइल्ड रेपिस्ट को सपोर्ट करती हूँ और एंड आई हेट इंडिया एंड आई हेट इंडियंस। उसके बाद से मुझे कम से कम, इनफैक्ट ये 28 अप्रैल की बात है, तब से अब तक सिर्फ गैंग रेप के थ्रेट्स मिल रहे हैं। लोग मुझसे, मैंने हालांकि क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये फेक ट्वीट है, मेरे नाम पर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो मेरे घर आके मेरा गैंग रेप करेंगे, मेरा एड्रेस पब्लिक डोमेन में है, मेरे नंबर पे लोग अपनी गंदी तस्वीरें मुझे भेज रहे हैं, कह रहे हैं आप प्रोस्टिट्यूट हैं, आप हमें सर्विस कर सकती हैं। तो इस तरह का जो है एक माहौल बना हुआ है।
क्या आपने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है?
जी, मैंने पुलिस में साकेत पुलिस को 26 अप्रैल को कंप्लेन दर्ज कराई थी मैंने। शुरुआत में उन्होंने कंप्लेन लेने से मना कर दिया था ये कह के कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसके बाद जब मैं 0 FIR थ्रेटन किया मेरी लॉयर ने, तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेन लिया है 26 अप्रैल को, और अब तक तो खैर कुछ नहीं हुआ है।
आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपकी जो किताब है गुजरात फाइल्स काफी पॉपुलर है और माना गया था कि ये उस समय जो वहां पे दंगे हुए थे उसकी खाल उधेड़ती ये रिपोर्ट थी। क्या आपको लगता है कि इन धमकियों के तार कहीं उस रिपोर्ट से जुड़े हैं?
जी बिल्कुल, ये उसी किताब से ही नहीं बल्कि जितनी रिपोर्ट्स मैंने गुजरात में स्पेसिफिकली की है, ये कंटेन्ड हेट है जो अलग अलग वक्त पर निकलता आ रहा है। ये पहले भी हो चुका है, जो मेरी किताब लॉन्च से कुछ दिनों पहले जब मैंने एक और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट किया था गुजरात से फेक इनकाउंटर पर, तो लोगों ने मेरे नाम की गंदी तस्वीरें, मेरे नाम की इमेजेस इन्होंने ट्विटर पे लगाए थे।
जो थ्रेट्स मिल रही हैं उस सिलसिले में UN ने भी कहा है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्थिति बहुत खराब है।
जी, UN के इंटरवेंशन कम से कम एक महीना हो चुका है उसके लेकर, लेकिन ऑन द ग्राउंड उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जो केस फाइल किया गया उस केस पे कोई एक्शन हुआ, किसी का अरेस्ट हुआ, अब तक कुछ हुआ नहीं है।
ये थी खोजी पत्रकार राणा अय्यूब, जिन्हें जान से मारने और यौन हिंसा की धमकियां मिल रही हैं, और उनसे बात कर रही थी BBC संवाददाता मानसी दास। और आइए अब दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही हैं, जानते हैं भूमिका राय के साथ।
दिल्ली से छपने वाले प्रमुख अखबारों की बात करें संदीप, तो द हिंदू ने अपने पहले पन्ने पर जो खबर छापी है वो थोड़ी चिंता पैदा करने वाली है। अखबार लिखता है कि मालदीव के साथ संबंधों में आई मंदी के चलते भारतीयों के नौकरी के अवसर पर असर खतरा मंडरा रहा है और इस पर एक नकारात्मक असर पड़ा है। अखबार आगे लिखता है कि कंपनियों ने अपने विज्ञापन में लिखा है कि भारतीयों को आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें वहां काम करने का परमिट नहीं मिलेगा।
नो एंट्री।
जी, और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर आज से रूस में शुरू हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप की तस्वीर प्रकाशित की है और ये तस्वीर काफ़ी आकर्षक है। और इसके अलावा अखबार ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य अभियुक्त हीरा व्यापारी नीरव मोदी से जुड़ी खबर को प्राथमिकता दी है। अखबार लिखता है कि नीरव मोदी ने रद्द हो चुके पासपोर्ट से 4 यात्राएं की हैं।
अच्छा
जी,
और कहां की यात्राएं की हैं?
ये US, UK और हांगकांग के बीच में ये यात्राएं हुई हैं
रद्द पासपोर्ट के बावजूद।
जी, और हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सरकार चाहती है कि ओला उबर कोई ऐसी सुविधा दे जिससे जब कोई महिला शेयर राइड ले तो वो ही अपना को पैसेंजर चुने। और इसके अलावा अखबार ने अपने पहले पन्ने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक तस्वीर प्रकाशित की है।
इफ्तार की दावत।
जी जी जी, ये तस्वीर जो है वो राहुल गांधी जी द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी की है। और द स्टेट्समैन ने कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में 4 BSF जवानों के मारे जाने की खबर को प्राथमिकता दी है अपने पहले पन्ने पर। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली के बदलते मौसम को अपने पहले पन्ने पर अच्छे से तस्वीर के साथ जगह दी है। इसके अलावा ये खबर
भूमिका, यदि आप इस समय कोशिश करें इस खिड़की शीशे से बाहर देखने की, तो आपको अभी भी सुबह का वक्त है, हवा चल रही है, लेकिन धुंध है, अभी भी आसमान साफ नहीं है दिल्ली का।
जी बिल्कुल, और ये कई तस्वीरें आई हैं, अगर अलग अलग अखबारों की बात करें तो ये एक ऐसी खबर है जो लगभग सारे दिल्ली से प्रकाशित होने वाले लगभग हर अखबार ने ली है और अलग अलग तस्वीरें
ली हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान से जो हवाएं आई हैं वो इस तरह की धूल और रेत को लेकर
जी, और ये आने वाले 3 दिनों तक भी इसका असर बना रहेगा ऐसा कहा जा रहा है। NBT ने एक मतलब राजपथ की तस्वीर जो है वो प्रकाशित की अपने पहले पन्ने पर और यही दिल्ली के बदलते मौसम की है और हेडिंग दी है कि राजस्थान की धूल घोंट रही है दिल्ली का दम। तो ये राजस्थान से आने वाला तूफान था जिससे दिल्ली NCR का इलाका प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो भैयू जी महाराज से जुड़ी खबर है, NBT ने ही प्रकाशित की है। दौलत सेवादार के नाम कर गए भैयू जी, तो अपनी सारी संपत्ति अपने सेवादारों के नाम कर गए हैं भैयू जी। और इसके अलावा अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना जारी है और सिसोदिया भूख हड़ताल पर बैठ गए।
मैं आपके यहाँ धरना दूं, आप मेरे यहाँ धरना देंगे, चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। बहुत शुक्रिया भूमिका राय, दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा के लिए। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जहाँ सरकारों में महिलाओं को बाकायदा महत्व दिया जाता है, उन्हें मंत्रिमंडल में भरपूर जगह दी जाती है। स्पेन एक ऐसा ही देश है जहाँ सोशलिस्ट नेता पेट्रो सांचेज के नेतृत्व में बनी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाकर एक नई मिसाल कायम की है। दुनिया जहान में वात्सल्य राय और जानकारी दे रहे हैं।
दुनिया जहान। महिला दिवस यानी 8 मार्च को महिलाओं की हड़ताल। उस दिन स्पेन की राजधानी मैड्रिड समेत तमाम शहरों की सड़कों पर उमड़ी भीड़ को देखकर एक बार की लगा मानो देश की हर महिला फेमिनिस्ट स्ट्राइक को समर्थन देने बाहर निकल आई है। 3 महीने बाद भी वो प्रदर्शन तमाम लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाए हुए है। महिलाओं के इस अभियान को पुरुषों का भी समर्थन मिला और उस दिन हर पुरुष ने 4 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली।
रही हूँ
बार बार ऐसी सोच रखने वाले स्पेन के इकलौते शख्स नहीं थे। 2 जून 2018 को जब सोशलिस्ट पार्टी के नेता पेड्रो सांचेज देश के 7वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे तो उनके कानों में भी फेमिनिस्ट स्ट्राइक के नारे गूंज रहे थे। सांचेज साल 2014 में सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया बने थे, उसके पहले वो सुर्खियों से दूर थे। सांचेज ने पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का वादा किया था। साल 2015 और 2016 के चुनावों में मिली हार के बाद उन्हें पार्टी की कमान छोड़नी पड़ी, लेकिन वो लौटे और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी पीपुल्स पार्टी के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। रखॉय हटे और स्पेन की बागडोर सांचेज के हाथ आ गई। सांचेज ने अपनी कैबिनेट के जरिए देश की आधी से ज्यादा आबादी को नए खाब दे दिए। सांचेज की 17 सदस्यीय कैबिनेट में 11 महिलाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं,
एक काफी इसका सिंबलिज्म अटैच्ड है उसमें। मुझे लगता है जो एक बॉटम से नीचे से जमीनी तौर पर एक जो डिमांड उठ रही थी कि इतना लो रिप्रेजेंटेशन क्यों है, और खासकर उन सोसाइटीज में जहां पर डेवलपमेंट को लेकर जहां पर फेमिनिस्ट मूवमेंट काफी स्ट्रांग रहा है काफी समय से, तो वो मुझे लगता है अपने आप में एक सरकार पर और पॉलिटिकल एलीट्स पर दबाव पड़ रहा है, उसके चलते हम ये बदलाव देख रहे हैं।
लेकिन स्पेन की कैबिनेट में महिलाओं को बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व पहली बार नहीं मिला है। यूरोप की राजनीति पर नजर रखने वाली और पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावने कहती हैं कि सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में होती है तो महिलाओं को अहम पद मिलते हैं।
जब मिस्टर होजे लुइस ज़ापातेरो सोशलिस्ट पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने काफी सारी औरतों को बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे नॉमिनेट किया था। पहली बार ऐसा था जहां पर स्पेन में एक डिफेंस मिनिस्टर जो महिला थी।
लेकिन ज़ापातेरो की कैबिनेट में 50% महिलाएं थी, जबकि सांचेज ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। महिलाओं को कैबिनेट में बराबरी की जगह देने वाले कनाडा, स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों से स्पेन काफी आगे निकल गया है। दुनिया भर की सरकारों के मंत्रिमंडल के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त किसी भी देश की कैबिनेट में 52.9% से ज्यादा महिलाएं नहीं थीं। खुद स्पेन के तब के पीएम रखॉय की कैबिनेट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 38% था। लेकिन बास्केटबॉल के खिलाड़ी रह चुके सांचेज अब राजनीतिक खेल के नियम बदलने पर आमादा है। 350 सदस्यीय संसद में सिर्फ 84 सीट रखने वाले सांचेज महिलाओं को आगे बढ़ाकर कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट में महिला मंत्रियों को योग्यता के आधार पर ही जगह दी है। वैजू नरावने,
ये नहीं है कि सिर्फ नाम के वास्ते स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी औरतों को लिया, ऐसी औरतों को चुना है जिनकी क्वालिफिकेशंस बहुत जबरदस्त है, कि जिनका तजुर्बा, जिनका एक्सपीरियंस काफी है, जिन्होंने पहले भी मिनिस्टर के नाते सर्व किया है।
सांचेज की महिला मंत्रियों की टीम अनुभव और योग्यता के पैमाने पर खरी बताई जा रही है, लेकिन क्या वो स्पेन के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान करने में कामयाब होंगी? इस सवाल पर हर्ष पंत कहते हैं,
चैलेंजेस तो स्पेन के सामने बहुत ज्यादा हैं। हालांकि सबसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप में, लेकिन अभी भी वो पुराने अपने जो लेवल्स हैं उसको अटेन नहीं कर पाई है। अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस, इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। अभी भी जो एक जो मुद्दे इंडिपेंडेंस कैटलोनिया का उठा था वो अभी भी नीचे कहीं पर सिमर कर रहा है। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी अभी खत्म नहीं हुई है।
स्पेन का इतिहास और संस्कृति विविधता से भरी रही है। फुटबॉल के लिए दीवानगी रखने वाला ये देश बुल फाइटिंग को धरोहर की तरह सहेजता है। इसके पास 16वीं से 19वीं सदी तक दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार होने का गौरव है, तो 1936 से 1939 तक गृह युद्ध का ताप झेलने का अनुभव भी है। 20वीं सदी के चौथे से सातवें दशक तक इसने तानाशाही को भी देखा है। वैजू नरावने कहती है कि स्पेन का प्रगतिशील समाज बीते 4 सालों की आर्थिक दुश्वारियों से उबर चुका है। अगले 2 साल में चुनाव कराने का इरादा जाहिर कर चुके सांचेस के लिए ये दौर सुनहरा साबित हो सकता है, लेकिन क्या उन्हें महिलाओं को वरीयता देने का फायदा मिलेगा? सुनिए हर्ष पंत की राय।
अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो जो इलेक्टोरल कैंपेन होगी वो जेंडर पर नहीं लड़ी जाएगी, वो मुद्दों पर लड़ी जाएगी, और मुद्दे अगर ये कैबिनेट सॉल्व नहीं कर पाएगा तो इसका फायदा पेड्रो सांचेस को उतना नहीं होगा।
लेकिन वैजू नरावने की राय इससे अलग है।
औरतों का जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण वोट हो गया है। ये सब मी टू मूवमेंट, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट मूवमेंट्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो आ रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रही हैं।
और स्पेन में महिला मंत्रियों को ऐसा मौका मिला है जब वो पुरुषों के सामने चुनौती रख सकें कि वो समानता हासिल करने के लिए उनके साथ संघर्ष करें।
दुनिया जहान में ये थी वात्सल्य राय की प्रस्तुति। कैसी लगी आपको? आपकी राय का रहेगा इंतजार। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। भारत की चेस प्लेयर सौम्या स्वामीनाथन ने अगले महीने ईरान में होने वाले चेस टूर्नामेंट से खुद को बाहर कर लिया है। सौम्या ने मुस्लिम देश ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता पर विरोध जताते हुए ये फैसला लिया है। ये चेस टूर्नामेंट ईरान में 26 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में होने वाला है। इससे पहले भी 2016 में भारत की पिस्टल शूटर हिना सिद्धू ने ईरान में होने वाले एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप से अपने आप को अलग कर लिया था। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है खेलों के हिसाब से, क्योंकि आज से ही शुरू हो रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप, और आज पहला मैच रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में खेला जाएगा। भारत के फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर गौस मोहम्मद,
देखिए रशिया मेजबान देश है, मेरे ख्याल से एक मेजबान देश, अगर वो क्वालिफाइंग दौर से आते तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते थे। उनकी टीम में इतनी अभी सलाहियत नहीं है। आपने देखा है कि इटली जैसा देश नहीं क्वालिफाई कर सका है, नीदरलैंड जैसा हाईली टैलेंटेड देश नहीं आ सका। तो रशिया को एक एडवांटेज है, हॉस्ट नेशन है, तो सऊदी अरब के साथ उनका मुकाबला है। और ये सऊदी अरब जैसी जो टीम है ये दूसरी टीम को एक मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं दिखते नहीं हैं, इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको एक्सपोजर चाहिए जिससे ये वर्ल्ड कप आए उसमें बेहतर कर सके। तो हो सकता है ये मैच रशिया के लिए पहला मैच है, मुश्किल साबित हो सकता है, मेरे ख्याल से ये ड्रॉ जा सकता है।
आज बेंगलुरु में टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली 12वीं टीम बनने जा रही है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। टीम इंडिया अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में इस ऐतिहासिक मुकाबले को शानदार अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखेगी। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में भी काफी दमखम है।
खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
फीफा ने घोषणा की है कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से 2026 विश्व कप के संयुक्त मेजबान होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक हथियारों की निगरानी करने वाले अधिकारियों के मुताबिक बहुत हद तक संभव है कि उत्तरी सीरिया में पिछले साल हुए 2 हमलों में नर्व एजेंट सेरीन और क्लोरीन का इस्तेमाल हुआ हो। हैती ने ब्रिटिश सहायता एजेंसी ऑक्सफैम पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर करीब 80 अरब रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यमन की स्थिति पर बात करने के लिए ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक की मांग की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार और फेसबुक के जरिए हमें आपसे जोड़ा प्रशांत चहल ने। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार, समय जानते हैं आप, शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। BBCHindi.com है आपके साथ।